पाठ चार। जब हमने इस बारे में बात की कि यीशु ने मरकर क्या हासिल किया, तो हमने देखा कि अपने बारे में उनके दावों पर भरोसा करने से हम उनके वादों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनके वादों को हमारे जीवन में साकार करने के लिए हमें दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव की भी आवश्यकता है। परिवर्तन की शुरुआत पढ़ने और उस पर भरोसा करने से होती है जो वह अपने बारे में कहता है और जो वो हमारे बारे में कहता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि यीशु हमारे बारे में जो कहते हैं उसकी तुलना में वे अपने बारे में क्या कहते हैं। एक, यीशु पूरी तरह से भले हैं, हम बुराई से भरे हुए हैं। दो, यीशु ने हमसे प्रेम किया, हम उनसे नफरत करते थे। तीन, यीशु ने हमें चुना, हमने उन्हें ठुकरा दिया। चार, यीशु ने पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, हमने परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध विद्रोह किया। पांच, यीशु ने स्वेच्छा से अपने शत्रुओं के लिए कष्ट उठाया, जिनमें हम भी शामिल हैं। हम अपने प्रियजनों के लिए भी कष्ट सहने को तैयार नहीं हैं। छह, यीशु सबसे महान सेवक थे, हम सेवा करना नहीं बल्कि सेवा करवाना चाहते हैं। सात, यीशु मृतकों में से जी उठे, हमारा अपनी कब्रों में गिरना तय है, फिर भी आशा है क्योंकि यीशु हमें अपना जीवन प्रदान करते हैं। यीशु परमेश्वर हैं, फिर भी पूरी तरह से मनुष्य हैं। वह अब तक जीवित रहने वाले सबसे महान व्यक्ति हैं और उन्होंने हमसे प्रेम करना और हमारे प्रेम को आगे बढ़ाना तब चुना जब हम उनके दुश्मन थे। यीशु से विनम्रतापूर्वक संपर्क किए बिना किसी को भी बदला नहीं जा सकता। यीशु कोई जादू टोना नहीं है, वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे मन के हर विचार को जानते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। यदि हम यीशु के पास इस इच्छा से आते हैं कि हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग करें, तो वह कभी भी हमारा स्वागत नहीं करेंगे। जब तक हम अपनी बुराई से पीछे नहीं हटते और उस बुराई से नफरत करना शुरू नहीं करते और उसके बजाय उनकी अच्छाई को नहीं चुनते, हम उन्हें या उनके वादों के लाभ को कभी नहीं जान पाएंगे। बुराई पर पछतावे का यह रवैया यीशु की भलाई के लिए तीव्र इच्छा और उनके वादों पर दृढ़ विश्वास के साथ मिलकर हमारा नया सामान्य बन जाता है। जब हम बाइबल में उनका कहना पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं और उनकी इच्छा चाहते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण घमंडी से विनम्र में बदल जाता है। हम उनके जैसे बनने लगते हैं। यीशु हमारे हृदयों को देखते हैं। हमें बुराई से नफरत करने और उसकी जगह उनकी भलाई की इच्छा बढ़ाने की जरूरत है। फिर जब हम यीशु से हमें क्षमा करने के लिए कहते हैं, तो वो क्षमा कर देगा। जब हम सच्ची विनम्रता के साथ उनके पास जाते हैं, तो वो हमारी टूटी हुई स्थिति में हमसे मिलते हैं और हमारे दिलों को सुधारना शुरू कर देते हैं। यह तब होता है जब हम खुद को ईमानदारी से देखते हैं और उस सच्चाई के साथ सहमति में अपना जीवन जीते हैं जिसे परमेश्वर ने प्रेम करने और हमें अपनी भलाई में विकसित करने के लिए चुना है। तभी परमेश्वर हमें जीवन, आनंद और प्रेम देते हैं। यह सुंदर नहीं है कि वो हमें इस प्रक्रिया में कैसे शामिल करता है? यदि तुम्हें अपनी बुराई पर शर्म आती है, तो अच्छा है, उनके पास दौड़ें, विनम्रता से घुटने टेकें और अपने बारे में सच्चाई दिखाने के लिए उसे धन्यवाद दें। यह इस बात का प्रमाण है कि यीशु प्रेम से आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बुराई से फिरें और इसके बजाय यीशु की ओर मुड़ो। अपने आप को बाइबल में डुबो दो, प्रार्थना में डूब जाओ। इस बात पर ध्यान दें कि यीशु कौन है और वो आपके अंदर और आपके माध्यम से क्या करने का वादा करते हैं। उनके अधीन रहें ताकि आप उन्हें खुश कर सकें और उनके साथ घनिष्ठ मित्रता में रह सकें। याद रखें कि उनका प्रेम और वादे ही आपको शुद्ध जीवन जीने की शक्ति और अधिकार देते हैं। यह एक निरंतर दैनिक प्रक्रिया है। जब आप असफल हों तो अपराध बोध या निराशा की भावना में न फंसें। जिस क्षण आप असफल होते हैं, यही वो क्षण होता है जब आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यह विचार कि आपकी बुराई परमेश्वर से अधिक शक्तिशाली है, हास्यास्पद और गर्वपूर्ण है। जब आप उनके विरुद्ध थे, तभी यीशु आपसे प्रेम करते थे। निस्संदेह अब वो तुम्हें माफ कर देंगे, क्योंकि तुम उनकी संतान हो। वो आपकी बुराई से अधिक सामर्थी हैं, और जितना आप खुद को नापसंद करते हैं, वो आपसे उससे अधिक प्रेम करते हैं। उन पर भरोसा रखें और आप उम्मीद नहीं खोएंगे। गहराई में देखें। एक यूहन्ना एक तक, इफिसियों 5:8 तक और यूहन्ना 11:9-10 तक पढ़ें। फिर क्षमा के बारे में अपनी समझ को लिखें और आपके लिए प्रकाश में चलने का क्या अर्थ है इसके बारे में प्रार्थना करें। फिर किसी विश्वसनीय ईसाई मित्र से ईमानदारी से चर्चा करें। क्या आप प्रकाश में चल रहे हैं? यदि नहीं, तो प्रकाश में कदम रखने के लिए आप आज क्या परिवर्तन कर सकते हैं?